ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सदन में विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे आवंटित किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं बल्कि न्याय देना है। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। विधेयक को पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इससे आगे विचार के लिए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति JPC को सौंप दिया गया था। इस बीच भाजपा, कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को आज उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। भारत और चिली ने कल नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के लिए समझौता किया। दोनों देशों ने एंटार्क्टिका सहयोग पर आशय पत्र का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के साथ दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि चिली लैटिन अमेरिका में भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत कई क्षेत्रों में चिली के साथ अनुभव साझा करने के लिए तैयार है।
आज हमने एक पारस्परिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने के लिए अपनी टीम्स को निर्देश दिए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल दिया जाएगा, रेजिलिएंट सप्लाई और वैल्यू चेन्स को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, स्पेस तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिली के साथ साझा करने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चिली को अंटार्कटिका के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। इस अवसर पर चिली के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए चिली की प्रतिबद्धता को दोहराया। राज्यसभा ने विमान उपकरणों में हितों की सुरक्षा विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक मोबाइल उपकरणों पर अंतर्राष्ट्रीय हितों पर समझौते को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास है। ये केंद्र सरकार को समझौते और प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान करता है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन बाजार है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जयंत जय भट्टाचार्य ने कल यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के 18वें निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। NIH अमेरिका की एक प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान एजेंसी है। डॉक्टर भट्टाचार्य डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में सबसे वरिष्ठ भारतीय अमरीकियों में से एक हैं। उन्हें नवंबर में इस पद के लिए नामित किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने देश में अवैध रूप से रह रहे 166 नेपाली नागरिकों को सजा से माफी दे दी है। इस फैसले के बाद नेपाल सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार का आभार व्यक्त किया। नेपाल सरकार ने कहा कि रमजान और ईद के मौके पर ये माफी दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। अमेरिका ने ताकत के जरिए ताइवान जल डमरू मध्य की यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का विरोध करने के अपने रुख को दोहराया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बात कही। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 52 रन और प्रभ सिमरन सिंह ने 69 रन बनाए। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।